इशिका और अभिमन्यु इस वक्त चॉपर में बैठे हुए थे, तभी आदित्य उनके पास आया। अर्पित को उनका बिहेवियर अजीब नहीं लगा, पर आदित्य समझ गया था कि इशिका और अभिमन्यु उनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होने की वजह से काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। इतनी आसानी से वे उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए थे। मामला उतना भी सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। सच का पता लगाने के लिए आदित्य उनके चेम्बर में आया। उसके हाथ में इस वक्त एक गन थी और उसने वो गन सीधे सीधे अभिमन्यु की तरफ पॉइंट कर दी थी। आदित्य ने अपने इरादे बता दिए थे, वो उन्हें मारना चाहता था। उसका ध्यान अभिमन्यु की तरफ था। तभी इशिका धीरे से उठी। आदित्य उससे ज्यादा दूर नहीं था। इशिका ने एक फ्लिप मारते हुए आदित्य के हाथ पर किक मारी। उसकी किक से आदित्य का बैलेंस बिगड़ गया था। आदित्य के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई थी। इशिका ने जल्दी से उसे उठाया और आदित्य की कनपट्टी पर रखकर कहा, मैं नहीं जानती हमारे बीच में क्या रिश्ता है, पर एक बात साफ है, फिलहाल आप मेरे लिए मेरी माँ को किडनैप करके उन्हें गायब करने वाले इंसान हैं। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपकी जान देने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगी, मिस्टर मर्चेंट। राधिका के लिए तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लगा, वो मेरी छोटी बहन है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारा मामा हुआ, आदित्य ने सहजता से अपना इंट्रोडक्शन दिया। आदित्य के परिचय देते ही अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, सदियों पहले एक भांजे ने अपने मामा को मार डाला था क्योंकि वो उसकी माँ को तकलीफ दे रहा था। लगता है हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। अभिमन्यु यहाँ श्रीकृष्ण और कंस की बात कर रहा था। इशिका ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। फिर वो आदित्य से बोली, मेरी माँ कहाँ है? हम तुम्हें भी वहीं लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब राधिका की वजह से तुम दोनों हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए, बगैर ये जाने कि वहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है, आदित्य ने हैरानी जताते हुए पूछा। उसकी बात का जवाब देने के लिए अभिमन्यु आगे आया और बोला, और आपको किसने कहा कि हमें खतरे का अंदाज़ा नहीं है या इस बात का पता नहीं कि आप क्या करते हो? हाँ, अंजलि ने सब बता दिया होगा, आदित्य ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य का भी अब उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो उनके साथ उनके एम्पायर को ख़त्म करने के इरादे से नहीं बल्कि राधिका को ढूंढने की दरकार से आए थे। आदित्य के चेहरे पर राहत के भाव थे। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा, आराम से बैठकर बात करते हैं। वी डोंट ट्रस्ट यू, इशिका ने कंधे उचकाकर कहा। अच्छी बात है, आदित्य बोला, तो तुम्हें उस आदर्श सिंघानिया पर ट्रस्ट था जो तुम्हें उम्र भर धोखा देता रहा। तुम्हारी जुड़वां बहन के बारे में भी नहीं बताया, जहां तक मैंने नोटिस किया तुम्हें नहीं पता है ना तुम्हारा असली बाप कौन है। आदित्य के सवालों पर इशिका चौंक गई। आदित्य के हावभाव से साफ था कि वो काफी कुछ जानता है। इशिका उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। तब आदित्य ने धीरे से उसके हाथ से गन ली और फिर उसे साइड के कैबिनेट पर रखते हुए कहा, आराम से बैठकर बात करते हैं। इशिका और अभिमन्यु को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वे दोनों वहां लगे सोफे पर जाकर पास पास बैठ गए थे। वहीं उनसे अलग आदित्य बेड पर बैठा हुआ था। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, हम राधिका को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो हमारी ही बहन है, हमसे बहुत प्यार करती है। देखकर लगता तो नहीं, कौन से भाई अपनी बहन को किडनैप करके उसकी फैमिली से दूर ले जाते हैं। आप लोग बहुत अजीब हो, अपने ही फैमिली मेंबर्स पर एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका क्या नतीजा निकल सकता है आपको अंदाजा भी है? इशिका ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। इशिका के गुस्सा करने के बावजूद आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारी जुड़वा बहन तुमसे अलग थी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता था, पर फिर भी उसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। शायद यही वजह है कि वो हमारे किसी काम की नहीं थी। और आपको ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि वो किसी काम की नहीं थी? वो मेरी बहन थी, एक इंसान, कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट नहीं, इशिका ने सख्त आवाज में कहा। तुम गलत समझ रही हो, अगर तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सब पता चल जाएगा तो तुम खुद अपनी मर्जी से अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार हो जाओगी। तुम्हें पता भी है कि इन एक्सपेरिमेंट के बाद में ह्यूमन बॉडी के जीन्स तक बदल जाते हैं, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन अच्छी पैदा होगी। सोचो, तुम दोनों पति पत्नी इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारे बच्चे कितने ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगे, आदित्य ने जवाब दिया। वो बातों की बातों में इशिका को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों का मतलब अभिमन्यु और इशिका बखूबी समझ रहे थे। वे दोनों एक साथ बोले, नो थैंक्स, पर हमें हमारे बच्चे नॉर्मल चाहिए। एक साथ बोलने के बाद इशिका और अभिमन्यु ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अभिमन्यु ने आदित्य की तरफ रुख करते हुए कहा, हम अपनी बॉडी पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएंगे, रही बात हमारे बच्चों की तो वे एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होंगे तो भी चलेगा, वे जैसे भी होंगे हमें उनसे प्यार होगा। इशिका ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे आपसे उलझने में कोई शौक नहीं है, आप बस मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दीजिए, हम उन्हें लेकर निकल जाएंगे, फिर आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करें या एनिमल एक्सपेरिमेंट, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इशिका ने अपनी बात साफ तौर पर रख दी थी। आदित्य ने उस वक्त उनसे कोई बहस नहीं की और सिर्फ सिर हिलाकर रह गया था। आदित्य उन दोनों की तरफ गौर से देख रहा था। उसने इशिका से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं चाहती तो अपनी माँ से पहले ही इस बारे में पूछ सकती थी, मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी सवाल से उन्हें तकलीफ हो, अगर वे नहीं चाहती कि मुझे उनके बारे में पता चले तो मैं भी उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी माँ काफी है।
इशिका ने जवाब दिया, तुम सच में एक आइडल बेटी हो, राधिका काफी लकी है। आदित्य ने इशिका की तारीफ करते हुए कहा, पर इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु और इशिका के रवैये से साफ था कि वे आदित्य से और ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आदित्य खुद ब खुद उठकर बाहर चला गया था। उसके जाते ही इशिका अभिमन्यु की तरफ पलटी और परेशान लहजे में कहा, अभिमन्यु मैं नहीं चाहती कि हम उनके साथ किसी भी तरह की लड़ाइयां बहस करें, हम बस माँ को लेकर निकल जाएंगे। मैं भी यही कहने वाला था, ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी तो हमने भी हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा और ये उन पर एक्सपेरिमेंट तक करने को तैयार हो गए, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु और ऋषिका अकेले तो आ गए थे, पर अब उन्हें मन ही मन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। वे एक अनजान जगह पर जा रहे थे, ऊपर से मर्चेंट फैमिली काफी अजीब और खतरनाक भी थी, जो लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और अब तक दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे, तो इसका मतलब साफ था, जरूर उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बलिदान दिए और लिए होंगे। अभिमन्यु ने इशिका को अपने सीने से लगाया और उसकी बेचैनी को दूर करने के लिए वो उसके बालों को सहलाने लगा। दूसरी तरफ इंडिया में जब तरुण ने उस पार्टी की न्यूज देखी तो वो हैरान रह गया। इशिका वही लड़की थी जो उनके घर पर थोड़ा बहुत लुक चेंज करके ईशानी की फ्रेंड बनकर आई थी और फिर वो अचानक ही अपनी जुड़वां बहन की कहानी सुना रही थी। जिस दिन इशिका उनके घर आई थी उसी दिन ईशानी पूरी तरह गायब हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर इशिका गायब हुई तो ईशानी आ गई। न्यूज देखने के बाद तरुण ये आंखें हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, इस लड़की की शक्ल को अगर हटा दूं तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ईशानी की तरह है, आवाज भी काफी हद तक मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस लड़की की बात कर रही है वो ईशानी ही है? अगर ऐसा है तो फिर मैंने तलाक किससे लिया था, ईशानी तो इस दुनिया में ही नहीं है, फिर मेरा तलाक और कंपनी कैसे किसी और के नाम जा सकती है?
तरुण काफी शातिर दिमाग का आदमी था, उसे समझने में देर नहीं लगी। वो इस वक्त एक होटल में अपनी माँ और रश्मि के साथ में रुका हुआ था। घर आने के बाद तरुण ने सारी सच्चाई उन्हें बता दी थी। हालांकि ईशानी से पीछा छूटने की वजह से उसकी माँ खुश भी थी, पर उनका सब कुछ छिन गया था, उनके घर तक से उन्हें निकाल दिया गया था। तरुण जल्दी से उठा और एक टैक्सी लेकर तुरंत युविका के घर के लिए निकल गया था। अभिमन्यु ने अपने पीछे से पृथ्वी को काफी कुछ संभालने को कहा था, उनमें एक जिम्मेदारी रूढ़ी की भी थी, जब तक वे वापस नहीं आ जाते वो सब युविका को ही संभालना था। इस बारे में बात करने के लिए पृथ्वी युविका के पास आया हुआ था। उसने विनम्रता से कहा, मिस चौधरी आपकी पूरी सिक्योरिटी हम देख लेंगे और रूही का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जब तक मिस्टर और मिसेज राजवंश वापस नहीं आ जाते बच्ची को आप ही को रखना होगा। ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तक मेरी फैमिली वाले भी आ जाएंगे, बस मुझे थोड़ा तरुण का डर लग रहा है, उसे शक ना हो जाए कि इशिका पार्टी में जिस लड़की का जिक्र कर रही थी वो ईशानी थी, अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, युविका ने परेशान स्वर में कहा। वे दोनों इस वक्त चौधरी मेंशन के बाहर की तरफ खड़े बात कर रहे थे। युविका की बात पूरी हुई थी कि पीछे से तरुण की आवाज आई। वो गुस्से में बोला, गड़बड़ हो जाएगी नहीं मिस चौधरी, गड़बड़ हो चुकी है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब कुछ छीन कर धोखा देने की? मैं उस अभिमन्यु राजवंश और तुम पर फ्रॉड का केस करूंगा, मेरी पत्नी को मार दिया और मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने, इतनी आसानी से तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा, मेरी बेटी कहाँ है? मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। तरुण वहां अच्छा खासा तमाशा करने के लिए तैयार था, वो अपने कदम घर के अंदर लेने लगा, तभी पृथ्वी ने एक हाथ आगे बढ़ाकर उसका गला पकड़ा और उसे पास खड़ी कार से लगाते हुए सख्त आवाज में कहा, इतनी आसानी से नहीं तरुण दीवान, चलो तुम सब समझ ही गए हो तो बता देता हूँ, हाँ तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, छोड़ो मुझे, तरुण ने छटपटाते हुए कहा, कितना भी मार लो लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, वो तलाक भी झूठा था जो 3 दिन पहले हुआ था। हाँ तो जाओ कर दो साबित, पर एक बार गौर से उन पेपर्स पर लिखी डेट को देख लेना, पृथ्वी ने तरुण को छोड़ते हुए कहा, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तरुण उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, युविका भी चौंक गई थी, पृथ्वी इतना कॉन्फिडेंट था तो जरूर उन्होंने कुछ प्लान कर रखा होगा, ये सोचकर युविका ने उम्मीद भरी निगाहों से पृथ्वी की तरफ देखा। उसकी नजरों को समझते हुए पृथ्वी ने अपने मोबाइल में एक डॉक्यूमेंट निकाला और फिर उसे तरुण के सामने करते हुए कहा, चलो तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देता हूँ, तुम्हारा मिस ईशानी मर्चेंट के साथ डाइवोर्स आज से 3 महीने पहले हुआ था, जल्दबाजी में तुम डेट चेक करना भूल गए, हाँ उनका डेथ सर्टिफिकेट बनने के लिए चला गया है, रही बात रूही की कस्टडी की तो वो तुमने अपनी मर्जी से मिस्टर राजवंश को दी है, वो भी पूरे 10 करोड़ रुपए लेकर। जैसे जैसे पृथ्वी बोल रहा था तरुण का मुंह खुला रह गया, वो हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। हाँ पर ये बात तुम साबित नहीं कर पाओगे, चलो अब जाओ यहाँ से, अगली बार यहाँ आसपास भी दिखाई दिए तो हमारे स्पेशल एजेंट तुम्हें मारने से पहले एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचेंगे, पृथ्वी ने उसे धकेलते हुए कहा। तरुण का सब कुछ लुट चुका था,
सबसे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था, जो उसने जल्दबाजी में किसी भी डॉक्यूमेंट को ना तो ठीक से पढ़ा और ना ही डेट चेक की। तरुण पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही युविका हल्का मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान, आप रूही की तरफ से बेफिक्र रहिए। जब तक मिस्टर और मिसेज राजवंश नहीं आ जाते, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। उन्हें आप पर पूरा यकीन है, तभी ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। फिर भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मैं यहीं दिल्ली में ही हूँ, पृथ्वी ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। अभिमन्यु ने पृथ्वी को जो जो काम सौंपे थे वो उन सबको बखूबी कर रहा था। रूरी की जिम्मेदारी युविका को देने के बाद वो वसुधा जी के पास जाने लगा। आखिर उनकी भी सिक्योरिटी और बाकी चीजें भी उसे ही देखनी थी। उन सबसे अलग 5 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद इशिका और अभिमन्यु उस अनजान आइलैंड पर पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मर्चेंट फैमिली ने अपने काम को करने के लिए उस पूरे आइलैंड को खुद के लिए खरीदा था। वहां उनकी एक्सपेरिमेंट लैब और बड़े से महल जैसे घर के अलावा और कुछ नहीं था। सारी फैसिलिटी इसी घर में मौजूद थी। इशिका और अभिमन्यु को भी राधिका की तरह गार्ड्स के बीच अंदर लाया गया और इस बार उनका वेलकम करने के लिए खुद मिस्टर गौतम मर्चेंट आ रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैप्टर के खत्म होने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक्सप्लोर मोर नॉवेल्स पर क्लिक करके आप मेरी बाकी नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप सर्च बार में मेरा नाम जानवी शर्मा लिखोगे तो मेरी बाकी नॉवेल्स आ जाएंगी। आप एक बार उन्हें भी पढ़कर ट्राई करें।